तो आप सबका स्वागत है। जन्म अष्टमी भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव के उपलक्ष में इस गौशाला के स्थान के ऊपर भक्तों ने भगवान के गुणगान करने के लिए, भगवान की महिमा गाने के लिए, भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, भगवान का कीर्तन करने के लिए, भगवान का प्रसाद सबको वितरण करने के लिए ये आयोजन किया है सूर्यनारायण प्रभु और बाकी यहाँ के रहने वाले भक्तों ने। उनकी तरफ से आप सबका स्वागत है और हम उनका आभार प्रकट करते हैं, उन्होंने हमको सेवा का अवसर दिया। भगवान श्री कृष्ण के संसार में आने का उद्देश्य क्या है? देखो, अमेरिका में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको मालूम होगा, कोई कंपनी होती है उसकी मिशन स्टेटमेंट होती है, मिशन स्टेटमेंट बोलते हैं कि भाई हम क्या करना चाहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की मिशन स्टेटमेंट क्या है? गो ब्राह्मण हिताय। भगवान श्री कृष्ण की मिशन स्टेटमेंट क्या बोलेंगे आपकी भाषा में? भगवान श्री कृष्ण के अवतार का लक्ष्य, उसका उद्देश्य एक ही है, क्या? गौ ब्राह्मण हिताय। गौ और ब्राह्मण का हित करना। हित करने का मतलब वो कैसे सुखी रहें, उनको सुखी करना, यही भगवान के आने का विशेष उद्देश्य है। तुम कृष्ण मिशन स्टेट में गौ, जैसे गौ ब्राह्मण हिताय च, गौ और ब्राह्मण को सुख देने के लिए, गोविंद गोविंदम आदि पुरुषम। तो आदि पुरुष गोविंद है, गौ का मतलब गाऊ और विंद का मतलब आनंद दे, जो गौ को आनंद दे। तो उनका नाम ही पड़ गया गौपाल, गौपाल। और गोपाल ने काम क्या किया? गोवर्धन को धारण किया। किसको धारण किया? गोवर्धन का मतलब क्या है? जो गो का वर्धन करे, जो गौ का वर्धन करे अथवा गौ को सुख दे, गौ का पालन पोषण करे, उसको गोवर्धन बोलते हैं। गोवर्धन, वर्धन मतलब किसी का पालन पोषण करना। तो गोवर्धन का मतलब गायों को सुख देना, घास देना, पानी पिलाना, घूमने के लिए स्थान देना, भगवान को उसको गोवर्धन कहते हैं। तो भगवान ने गोवर्धन को अपने साथ के ऊपर धारण किया, क्योंकि वो गायों की सेवा करता है, इसलिए भगवान को बहुत प्रिय है। तो भगवान के जीवन में, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का इस संसार में जब आविर्भाव हुआ तो उसके लिए उसको बुलाने कौन गया था मालूम है? देखो, कोई भगवान ऐसे तो नहीं आएंगे ना, आपके घर में कोई मेहमान ऐसे आता है आप बुलाए जाओगे तब आएगा ना। When you go and invite them somebody, you have to go and request him. आप जाके उसको कहना पड़ेगा कृपा करके हमारे पास आना, तब आएगा ना। तो कौन गया था मालूम है? पृथ्वी तो गई थी, लेकिन कैसे गई थी? गऊ का रूप धारण करके गई थी पृथ्वी। गऊ का रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण को बुलाने गई थी कि आप इस पृथ्वी के ऊपर आइए। भगवान इस संसार के ऊपर आए, आप जन्माष्टमी मना रहे हैं, इतना सारा उत्सव मना रहे हैं, इस भगवान को लाने के लिए कौन गया था? गौ माता का रूप धारण करके पृथ्वी गई थी। ये पृथ्वी गौ के का दी मदर अर्थ हैज अज्यूम द फॉर्म ऑफ ए काउ एंड रिक्वेस्टेड लॉर्ड टू मैनिफेस्ट ऑन दिस प्लैनेट। तो बुलाने कौन गई थी? गाय माता बुलाने गई थी, उसकी कृपा से भगवान आए। आपको मालूम है गोवर्धन पर्वत भगवान ने धारण किया था, तो इंद्र ने बहुत वर्षा की थी और फिर इंद्र कुछ कर नहीं पाया तो बहुत दुखी होकर नीचे आया। तो अकेला आते हुए उसको डर लग रहा था कि भगवान के सामने कैसे जाऊं अकेला, तो मैंने इतना सारा तकलीफ दिया है, ब्रजवासियों को बहुत कष्ट दिया है, अब मैं भगवान के सामने जाने में मुझे बहुत शंका हो रही है, बहुत भय हो रहा है। तो उसने क्या किया? सुरभि गाय को आगे कर दिया, गाय को आगे कर दिया, और गाय को आगे करके तुम आ जाओ भगवान के सामने, भगवान बांसुरी बजाएंगे, तुम्हें देख के प्रसन्न हो जाएंगे, तो फिर मैं आऊंगा। तो गाय को आगे करके इंद्र ने अपनी लाज बचा के भगवान को जाके प्रणाम किया। तो भगवान तो इंद्र के ऊपर बहुत नाराज थे, लेकिन गाय को आगे लेकर आया तो भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। इंद्र का प्रार्थना को स्वीकार करके उसको क्षमा कर दी। तो गाय भगवान के कृष्ण के जीवन में, आपको मालूम है, आप लोगों के हाथ में माला है ना, आप लोग माला जपते हैं ना, भक्तों को माला दिखाओ, मालूम है कृष्ण भगवान के हाथ में एक माला होती है, उस माला में हीरे मोती होते हैं। उसके हम किसके किसका नाम जपते हैं मालूम है, हरे कृष्ण जपते हैं, हम कृष्ण का नाम जपते हैं ना, पता है कृष्ण किस चीज की माला जपता है? कृष्ण शाम को जब घर लौटते हैं गायों को लेकर आते हैं, तब माला के ऊपर गिनते हैं, ए गोरी गाय आई, आ गई ये गोरी, आ गई गोरी, अरे ये नहीं अभी काली नहीं आई, काली नहीं आई तो दूसरा काली ऐसे बुलाएंगे, फिर वो आएगी। तो उसकी माला के ऊपर जितने गायों के जुत है, जितने गायों के ग्रुप हैं, हर एक ग्रुप का अलग अलग माला का दाना है। जब रात को आएंगे ना वापस, तब एक माला खिसकाएंगे, अच्छा गोरी गई, अच्छा धोली गई, अच्छा ये अच्छा एक नहीं आई है, कौन सी नहीं आई है, ओ आज ये नहीं आई है, इसको बुलाओ, हर एक गाय का नाम, और भगवान उसका नाम बांसुरी में ऐसे बजाएंगे तो गाय दौड़ती दौड़ती उधर आएगी। तो एक एक गाय को नाम से भगवान जानते हैं। आप अपने पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनका नाम भी आपको नहीं आता है, लेकिन भगवान को एक एक गाय का नाम आता है और उनको बुलाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ये जब भगवान यहां प्रकट हुए, और प्रकट कहां हुए, प्रकट हुए मथुरा में, और जिस वक्त मथुरा में प्रकट हुए, कहां प्रकट हुए मथुरा में, कंस के कारागृह में, जेल में। और जब प्रकट हुए वहां, तब देवकी माता और वसुदेव के सामने भगवान चार हाथ वाले विष्णु के रूप में प्रकट हुए, और उन माताजी ने जब देखा और उन्होंने प्रार्थना की, और फिर देवकी माता ने भगवान को कहा कि ये रूप में आप अगर हमारे बालक के रूप में प्रकट होंगे तो लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे कि चार हाथ वाला बच्चा पैदा किया। हाँ? कभी चार हाथ वाला बच्चा किसी को पैदा हुआ? आज तक नहीं हुआ ना, तो लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे, आप बच्चे बन जाओ, जैसे इंसान का बच्चा होता है ऐसे हो जाओ, ऐसा है ये, तो हमारे लोग उपहास करेंगे लोग, ऐसे देवकी ने कहा है, मंत्र ऐसा ही है कि लोग हमारा उपहास करेंगे, आप शिशु बन जाइए, बच्चा बन जाइए। तो भगवान बच्चा बने, रोने लगे, बोला रो मत, कंस के आदमी आ जाएंगे। भाई बच्चा को तो रोएगा, बच्चा बनेगा तो रोएगा, बोलता है बच्चा बन जा, बच्चा बनता है, बोलता है रो मत, क्या करूं। जब भगवान ऐसे बात कर रहे हैं तो बच्चे, जैसे छोटा बच्चा बन गए, तो भगवान बच्चे बनने के बाद भी वसुदेव को कहा तुम मेरे को लेकर चलो यहां से, छोटा सा बच्चा अभी जन्म लिया है, अभी पैदा, वो छोटा जितना बच्चा सामने खड़ा हुआ है, वैसे चतुर्भुज रूप में खड़ा, तब बालकम अद्भुतम चतुर्भुज, अद्भुत बालक, अद्भुत बालक मीन्स इज ए कंप्लीटली वेरी एस्टोनिशिंग चाइल्ड अपियर बिफोर देम इन फोर हैंडेड फॉर्म, देन ऑन द पीरियड ऑफ मदर देवकी ही अज्यूम द फॉर्म ए स्मॉल चाइल्ड, एंड देन ही इंस्पायर्ड वसुदेव, प्लीज टेक मी फ्रॉम हियर, यहां से मेरे को उठाओ, गोकुल ले जाओ, वहां यशोदा मां के पास एक लड़की हुई है, मुझे छोड़ के उस लड़की को लेकर आओ। वसुदेव ने कहा भगवान का आदेश है। अब यहां एक बात थोड़ी सोचने की है, वसुदेव इतना सत्यवादी था, वसुदेव का नाम सत्यवादी था, वो सच बोलता था, उसका इतना सच का बोलबाला था कि कंस जैसा क्रूर भी उसके सत्य की बात को मानता था कि वसुदेव झूठ नहीं बोल सकता। तो वसुदेव ने पहले तो अपने छह बच्चे दे दिए कंस को मारने के लिए, सातवां तो वहां दिखा ही नहीं, चला गया रोहिणी के गर्भ में, बलदेव को वहां भेज दिया, तो आठवां बच्चा लड़का हुआ तब कंस को दिया क्यों नहीं वसुदेव ने? वसुदेव तो सत्यवादी था ना, क्यों नहीं दिया? बहुत बड़ा प्रश्न है। हाँ, ही वॉज ए ट्रूथफुल पर्सन, ही मस्ट कीप हिज वो, ही शुड हैव गिवन कृष्ण टू द कंस। पता है जब उसने वचन किया था तब क्या कहा था, भागवत के दसम स्कंद के पहले अध्याय में, कंस देखो तुम्हारे को डर इसके बच्चों से है ना, और इसके आठवें बच्चे से भय है ना, मैं इसके सारे बच्चे जिससे आपको भय है उसके अलावा बाकी सब तेरे को दे दूंगा, जिससे तुम्हें भय है उसको नहीं दूंगा, बाकी सब दे दूंगा। संस्कृत भाषा ऐसी है, उसमें लिखा है सब बच्चे तेरे को दूंगा, जिससे तुमको भय है वो नहीं दूंगा। अगर भगवान आए किसी के घर में, क्यों आएंगे उसके पास जो भगवान की रक्षा करने के लिए तैयार नहीं है, तो भगवान क्यों आएंगे भाई? अगर भगवान को उठाए कंस को कोई दे के आएगा, तो उसके घर में भगवान आएगा क्या? हाँ, गाय को जो कसाई को दे के आएगा, उसके घर में भगवान आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो ऐसे थोड़ी वसुदेव घर में भगवान आएंगे। वसुदेव ने ऐसी बहुत चतुराई से ये शब्द कहा, आपको मैं सारे बच्चे दे दूंगा, लेकिन जिन आपको बच्चों से भय है ना, जिसे भय है उसको छोड़ के सब दे दूंगा, जैसे आपको भय है वो नहीं दूंगा। एक एक तो ये बात है। दूसरी बात, वसुदेव ने कहा मैं तो भाई, मैंने वायदा किया है ना, मैंने वचन दिया है कि मैं बच्चा दे दूंगा, लेकिन ये भगवान आया है मुझे कह रहा है मेरे को यहां से उठा के चलो, तो भगवान की बात मानू या मैं अपनी बात मानू? किसकी बात माननी चाहिए? भगवान की बात माननी चाहिए ना, अपनी बात तो नहीं चलेगी। अर्जुन ने अपनी कितनी बात की भगवत गीता में, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, नहीं करनी चाहिए, ये सब मर जाएंगे, लेकिन बात किसकी नहीं माननी पड़ी? भगवान की माननी पड़ेगी ना। जब भगवान ही कह रहे हैं मेरे को लेके चलो यहां से, तो मैं भगवान की बात में तो बाधा नहीं डाल सकता। फिर किसी ने कहा कि बच्चे का जन्म होता है तो आदमी बड़ा उधार होके दान करता है, चीज कुर्बान करता है, जो होता है बलिदान कर देता है ना, करता है। आप वसुदेव ने कहा मेरे घर में आठवां बच्चा आया है, जिसके लिए आकाशवाणी ने कहा था कि वो कंस को मारेगा, ये तो मेरा भाग्य है, भगवान मेरे घर में पधारे हैं, तो मेरे को कुछ ना कुछ तो कुर्बान करना चाहिए, जो मेरी सबसे प्यारी चीज है वो मेरे को दे देनी चाहिए ना, जो मेरा सबसे प्यारा है, व्हाट आई लव द मोस्ट, व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग इन माय लाइफ, आई शुड जस्ट सेक्रीफाइस दैट। वसुदेव बोला मैं तो जेल में, मेरे पास कुछ है ही नहीं, एक ही मेरा वचन है, वही सबसे अच्छा है, मैं वचन को कुर्बान करता हूं, नहीं देता। मैं कृष्ण के ऊपर वचन को घोल देता हूं, मेरे वचन को जाने दो, भगवान के सामने कुछ तो देना पड़ेगा ना, वचन याद छोड़ देते, जाने दो वचन को। सो देन कृष्ण को उठाया भगवान ने, और भगवान को वसुदेव ने ऐसे गोद में उठाया, ऐसे गोदी में उठाया, गोदी के उठा के बाहर निकले। बाहर क्या निकले, जैसे जैसे भगवान को ऐसे करके ऐसे वसुदेव ने यहां हृदय से लगाए। बच्चों को कहां रखते हैं आप लोग? माताजी दिल के पास रखते हैं, बच्चों को दिल के पास रखते हैं, क्योंकि उनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, दिल से लगा के रखते हैं, हृदय से लगाते हैं, है ना। और पाश्चात्य देश के लोग बच्चों को कहां रखते हैं? पीछे, जैसे भार नहीं टांगते हैं, टांगे पीछे ऐसे, जैसे सर के ऊपर कोई भार किसी ने रख दिया है, वो कहते छोटे बच्चे का मूत गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र लगता है माता पिता को, वो मूत करता है ना, वो भी उसको अच्छा लगता है, लेकिन ये पीछे रखते हैं, वो मूत करेगा दूर जाएगा, हमको नहीं लगेगा। इन्होंने केंगरू को देखा ना, बच्चा यहां रखते हैं मुंह उधर करके, तो ये भाई से टांग देते हैं, हम उसको ऐसे सीने से लगा के रखते हैं। तो जैसे ही भगवान को वसुदेव ने दिल से लगाया, सीने से लगाया, वसुदेव के हाथ से हथकड़ी नीचे गिर गई, पांव में बेड़ियां थी, पांव में बेड़ियां समझते क्या होता है, चेन इतनी होती है कि आप 25-30-20 फुट में आगे पीछे जा सकते, जैसे गेट के ऊपर जाओ रोटी लेके आ जाओ, लेकिन बाहर भाग नहीं जाओ। हाथ में हथकड़ी और पांव में बेड़ी, टूट के नीचे गिर गई। जो भगवान को अपने जीवन में हृदय में बिठाएगा, उसके तो सारे बंधन दुनिया के कट जाएंगे ना। ये संकेत मिलता है, दिस इज दी इम्प्रेशन इज गिवन बाय दिस लॉर्ड, दैट वन हु कैरीज कृष्णा विद इन द हार्ट, ऑल द बॉन्डेज ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड जस्ट शटर डाउन, दिस नो मोर एनी बॉन्डेज लेफ्ट, कोई बाकी बंधन नहीं रहता, सब बंधन। शब्द लिखा है कृष्ण वाहक वसुदेव, वाहक कहते हैं वाहन है ना, गाड़ी को वाहन बोलते हैं ना हिंदी में, जो ढोता है, कृष्ण को ढोने वाला, जो दिल में कृष्ण को ढोता है, वन हु कैरीज कृष्ण विद इन द हार्ट, उसके सारे बंधन कट जाते हैं। अब बंधन कट गए, वसुदेव बहुत नरम कपड़े के अंदर बालक को लिया और दरवाजे तक पहुंचे डरते हुए, कारागृह है, 7 दरवाजों से निकलना है, सब दरवाजों के ऊपर ताला लगा हुआ है, पहरेदार बैठे हुए, लेकिन भगवान ने कहा है हमको तो उसकी सेवा करनी है, बाधा आएगी तो वो टालेंगे, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त भगवान की माया, कौन सी माया, जो लोगों को भ्रम में डाल देती है, जो लोगों के ऊपर पट्टी डाल देती है आंखों पे, उस माया ने सब पहरेदारों को सुला दिया, सब पहरेदार सो गए। जैसे दरवाजे के पास वसुदेव पहुंचे दरवाजा खुल जाए, ऐसे लिखा है भागवत में, दरवाजा ऐसे खुले जैसे सूरज के उगने से अंधेरा भाग जाता है, कोई आवाज होता है अंधेरे के जाने जा, सुबह कोई आवाज नहीं होता ना, ऐसे दरवाजे खुलने कोई आवाज नहीं हो रहा है, दरवाजा अपने आप खुल रहा है। कोई कहे ऐसे कैसे हो सकता है, अभी कैसे क्या, पोर्ट आप पोर्ट लुइस में जाओ किसी बड़ी ऑफिस में, दरवाजे के पास जाए दरवाजा अपने आप खुलता है, खुलता है कि नहीं खुलता है। अभी तो आपके दरवाजे मुफ्त में खुल रहे हैं, ईगो जस्ट ओपन। आप जैसे मूर्ख को देख के दरवाजा खुलता है कि वसुदेव के सामने दरवाजा नहीं खुलेगा। वो भगवान के लिए दरवाजे को ताला लगा है, वो भी टूट गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये तो खुल सकते हैं ऐसे दरवाजे, तो भगवान ये तो जब भगवान को पहले ही ये विद्या मालूम थी, भगवान के पास वो रिमोट था जिससे सब कुछ खुल सकता है। अभी आजकल तो लोग गाड़ी से नहीं उतरते, अपने गैरेज के पास दरवाजा दबाते हैं, गैरेज का दरवाजा ऊपर हो जाता है, सब चीजें ऐसे बटन के ऊपर हो गई है, कहां से विद्या आई है। ये भगवान बैठे बैठे ऐसे माया को बोलते हैं तो वो सब काम, पूरे संसार का काम चला लेती है। दरवाजे खुल गए, अब मथुरा के शहर के अंदर आ गए, जेल से निकल के कहां, वसुदेव जी बाहर आ गए। बाहर आते ही ये मौसम कैसा है, बरसात का मौसम है, और ऊपर आकाश में बादल थे, और बादलों ने देखा कि ये जो बालक है इसका नाम आगे चल के घनश्याम होगा। भगवान श्री कृष्ण का क्या नाम है, इसका नाम घनश्याम होगा, हमारे नाम का बहुत बड़ा दुनिया के अंदर बोलबाला होगा। घन बादल को कहते हैं, श्याम घन मतलब बादल, क्लाउड। आप देखो बेचारे का जन्म हुआ है, अभिषेक भी नहीं किया है, ऐसे कैसे उठा के ले जा रहा है, चलो हम थोड़ा सा बूंदाबारी करते हैं, फुहारा ऊपर से चलाते हैं, शावर थोड़ा सा ऊपर से, बच्चे का स्नान हो जाना चाहिए, अभी जन्म हुआ है तो स्नान होना चाहिए ना, तो इसका स्नान भी मां नहीं करा पाई, तो जल्दी ले जा रहे हैं, अब हम किस काम आएंगे, इसी के नाम से हमारा नाम दुनिया में गाया जाएगा, घनश्याम की कुछ सेवा करते हैं। तो ऊपर से पानी गिरने लगा, पानी गिरने लगा तो शेष नाग ने देखा ये बादल है, ये अभिषेक तो एक लोटे से करना चाहिए, ये पूरे बादल बरस रहे, ये बच्चा भीग जाएगा। और वसुदेव के पीछे से शेषनाग ने ऐसे छाता कर दिया। तो किसी ने कहा आगे से क्यों नहीं आया शेषनाग, नाग आगे आता वसुदेव के हाथ से बच्चा नहीं नीचे गिर जाता, सांप को देख के आदमी क्या करे, हे राम। तो शेषनाग पीछे से फ्रॉम बिहाइंड ऊपर से कर्व कर। इंद्र ने देखा ये तो सब ठीक है, लेकिन ये तो हमारे जब कष्ट हम इंद्रारी व्याकुलम लोकम वृद्धंती युगे युगे, इंद्र जैसे लोक में व्याकुलता होता है तब भी भगवान अवतार लेते हैं हमारा, आज भगवान को कोई देख न ले कंस का पहरेदार, हमको ऐसी वर्षा करनी चाहिए कि जिस वर्षा में अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे। कभी ऐसी वर्षा होती है ना, सामने इतना आदमी भी खड़ा हुआ नजर नहीं आता है, बहुत तेज बारिश होने लगी, इतनी तेज बारिश होने लगी, वसुदेव जा रहा है गली से, कोई आदमी उसको देखता नहीं। रात को 12 बजे थे, वैसे भी सब सोए हुए थे, चौकीदार सोए हुए थे, कोई दिख नहीं रहा है कहीं से। जमुना के किनारे पहुंचे, लेकिन जमुना उस दिन तो समुद्र की तरह ऐसे छोलियां उसमें प्रसाद की वजह से हो रही हैं कि देखने से भय लगे, लेकिन भय तो लगता है, लेकिन वसुदेव के हाथ में भगवान है जिसका नाम ही अभय है। भागवत में एक शब्द लिखा है भक्तानाम अभयंकर, कौन भगवान अवतार लेने जा रहे हैं उधर लिखा है भगवान अपि विश्व आत्मा, कौन सा भगवान, विश्व आत्मा जो है, विश्व आत्मा का मतलब जो पूरे विश्व का मालिक है, जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजता है, और विश्व आत्मा का अर्थ लिखा है जो सबके प्रेम का विषय हो, जिससे सब प्रेम करते हो। भगवान कौन सा जिससे सब प्रेम, सब क्यों उससे प्रेम करते हैं, तब दूसरी लाइन में लिखा है भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भक्तानाम अभयंकर, भक्तों को अभयदान देते हैं, भक्तों को भय नहीं रखने देते हैं, वो भगवान जो भक्तों का भय नाश करते हैं, जो सबके प्रेम के विषय है, सबके हृदय में आत्मा के परमात्मा के रूप में, जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, वो भगवान आविशेष अंश भागे न अपने सारे दूसरे अंशों सहित, जैसे कि नरसिंह भगवान हुआ है, कि वामन देव हुआ है, कि वारा देव हुआ है, वो सभी भगवान के अंदर समाहित हो गए, अंश भागे न सब अंशों के साथ। क्या किया? मन अनंक दुब्दुबी ही, अनंक दुब्दुबी वसुदेव का दूसरा नाम है, वसुदेव का एक नाम है अनंक दुमदुभी। दुमदुभी सुना है, बजता है, बजाते हैं उसको, बोलते हैं दुमदुभी। अनक भी बाजे का नाम है। वसुदेव का जन्म हुआ था तब देवताओं ने बाजे बजाए थे, उन बाजों को सुनकर उसका नाम ही हो गया कि अनंक दुमदुभी। और भगवान कहां आ गया? वो वसुदेव के मन में आ गया, मन में आके बैठा। तो मन में भगवान आया, प्रकाश हुआ, जैसे आप देखते हैं कहीं फोटो होती है ना, फोटो के चारों ओर ये लाइट दिखाते ना, वो देखो वो लाइट दिखाइए ना, बार ऐसे दिखाते हैं ना, वो सर के पास इफुलजेंस अराउंड दी फेस, किसी भक्तों के साधुओं के दिखाते हैं ना, जिसके दिल में भगवान प्रकट हो गया उसमें से प्रकाश निकलता है। फिर लिखा है वसुदेव के दिल से जगन मंगलम अच्युत अंशम, जो जगत का मंगल करने वाला अच्युत का अंश है, सुर सुतेन देवी, देवी देवकी के हृदय में प्रवेश किया। हमारे आचार्य लिखते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म जैसे स्त्री पुरुष के मिलने से होता है ऐसे नहीं हुआ है, जैसे गुरु शिष्य को दीक्षा देता है ऐसे वसुदेव ने दीक्षा देके देवकी के हृदय में भगवान को स्थापित किया। गुरु अपने हृदय में प्रकट किए हुए भगवान को जब दीक्षा देता है तो शिष्य के हृदय में उसको स्थापित करता है। तो ऐसे वसुदेव के हृदय से भगवान देवकी के हृदय में प्रवेश किया। तो भगवान ऐसे आए संसार के अंदर जो हृदय के अंदर भक्त के प्रकट होते हैं। और जब वो जमुना के किनारे से आगे बढ़े तो भय कहां से होगा, अंदर गए लेकिन जमुना का पानी बढ़ने लगा, वसुदेव के पानी इतने इतने आया, तब वासुदेव ने सर के ऊपर बालक को उठाया। पहले दिल से लगा के जा रहा था लेकिन पानी बढ़ता गया तो बच्चे को ऊपर उठाता गया, लेकिन वसुदेव के पानी यहां तक आया, लेकिन वसुदेव घबराया नहीं। तब भगवान ने चरण छोड़े नीचे निकाले, जमुना जी ने चरण का स्पर्श किया, क्योंकि जमुना जी आगे चल के भगवान की पत्नी होने वाली है। भगवान की आठ रानियों में कालिंदी भगवान की पत्नी है, कालिंदी कालिंद पर्वत की बेटी जमुना है, जमुना का दूसरा नाम है कालिंदी। जमुना कालिंदी जमुना जय जय महावन। तो कालिंदी, कालिंदी तो भगवान से अब संबंध स्थापित करना था, इसलिए भगवान के चरण का दर्शन करना चाहती, जैसे हुआ तो फिर अपना दिल खोल के, जैसे आदमी दे देना ऐसे दिल खोल के जमुना ने रास्ता दे दिया। वसुदेव के पानी पांव से नीचे हो गया, रास्ता दे दिया बीच में, जैसे दोनों से बिल्कुल बीच में रास्ता दे दिया। वसुदेव कहां पहुंच गए? गोकुल में पहुंच गए। गोकुल के अंदर नंद बाबा को 80 साल से कोई बच्चा नहीं हुआ था। नंद बाबा की उम्र क्या थी यशोदा की? 80 साल, लेकिन द्वापर युग था, उनकी उम्र ज्यादा होती थी। नंद बाबा को कोई बच्चा नहीं था। बहुत बड़ा एकादशी का व्रत करते, द्वादशी का व्रत करे, गर्ग ऋषि ने कहा, तो रात को सोई हुई यशोदा के सामने स्वप्न में भगवान नीलमणि के रूप में, नीले भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, मां हम अब आपके पास आएंगे। तो वहां यशोदा को भी गर्भ था और वो दाई मां को बुला के रखा था घर में कि गर्भ होने, अब बालक होने वाला है। अब दाई मां बैठी थी, देख रही थी यशोदा को इस तरफ से। नंद बाबा ने बच्चे को भेजा था अपनी बहन को बुलाने के लिए, पांच भाई है एक बहन भी है, बोला बहन को लेके आओ क्योंकि भुआ को होना जरूरी है। जब बच्चा होता है तब भुआ घर में बड़े आगे पीछे ज्यादा होती है, होती है कि नहीं होती है? हाँ, भुआ को बहुत जल्दी बुलाना पड़ता। तो भुआ को लेके आए, अब बालक होने की तैयारी है और दाई मां माता जी को देखती है यशोदा को, यशोदा तुमने कभी जुड़वा केला खाया है क्या? केले आते हैं ना, केले डबल केले आते हैं आप, या नहीं दो केले, एक केला है ना, कभी कभी दो साथ होते हैं ऐसे केले। पूछता है तो यशोदा आपने दो केले कभी खाए हैं? बोले क्यों पूछती हो? कि दो बच्चे आपके गर्भ में, दो बच्चे दिख रहे हैं। ऐसे पुरानी दाइयों का ऐसे कोई पता नहीं अनुभव कैसा था कि तुम्हारे के दो बच्चे हैं बेटे, बच्चे तुम्हारे को दो दिख रहे हैं, और वाकई दो बच्चे थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने जोग माया को कहा कि तुम यशोदा के पास मेरी अनुजा के रूप में जन्म लो। अनुजा का मतलब छोटी बहन, तो छोटी बहन का मतलब है वहां तो यशोदा के पास कृष्ण को प्रकट होना है ना। तुम दो बच्चे हैं, ऐसे कहा तब तक योग माया। मथुरा में कौन सबको सुलाया किसने? माया ने, महामाया ने। लेकिन गोकुल में भगवान के शुद्ध भक्तों को योग माया, भगवान की लीला कराने वाली शक्ति जो है, योग माया और महामाया में अंतर है। महामाया योग माया का परछाई है, जो दुर्गा के रूप में संसार में सबको भ्रम में डालती है। लेकिन योग माया जो है वो भगवान की लीला करने के लिए भक्तों को थोड़ी देर के लिए भुला देती है, ताकि भगवान की लीला हो सके। तो भक्त भगवान की योग माया के अधीन होता है, संसारी लोग भगवान की मां माया में बंधा हुआ होता है। तो महामाया और योग माया में अंतर है। तो गोकुल में योग माया ने सबको सुला दिया। गीत गा रही थी, सब गोपियां कठी थी। अभी तो यशोदा को थोड़ी देर में लाला होगा, यशोदा को बच्चा होगा, चलो गीत गाओ। गीत गाती गाती योग माया ऐसा काम किया, किसी का ऐसे सर हो गया, किसी का वटके ऐसे बैठे ढोलक के ऊपर, बाहर नंद बाबा आदि सब गोप ग्वाल बैठे, वो सब सो गए, अभी होने वाला कुछ नहीं हो रहा है। वसुदेव जी अंदर प्रवेश किया, सब सोए हुए थे। यशोदा जी मैया के पास कुछ देखा नहीं, अपने हाथ में लाए थे कृष्ण को सुला दिया, और वहां बच्ची थी उसको उठाया। लेकिन यशोदा मां ने एक बच्चे को और एक बच्ची को जन्म दिया। जो बच्चा वसुदेव लाए थे, वो बच्चा जो यशोदा ने जन्म दिया था, उसके अंदर प्रवेश कर गया, दोनों एक हो गए। एक अंश भागे का अर्थ ये लिखा है कि देवकी माता भगवान श्री कृष्ण की प्रति उनका ऐश्वर्य भाव था, ऐश्वर्य का मतलब मेजेस्टी और रेवरेंस का था। उनको देख के देवकी प्रणाम करने का मन करता था, तो भगवान वहां थोड़े से पूर्ण रूप से नहीं, विष्णु रूप से ऐश्वर्य में आए। लेकिन यशोदा पूर्ण प्रेममयी मां है, जिसको ऐश्वर्य बिल्कुल नहीं है कि भगवान है, ये भगवान नहीं है, मेरा बेटा है, ये भगवान नहीं है, वो भगवान नहीं मानती है, भगवान को अपना बेटा मानती है। तो वो प्रेम है, वात्सल्य शुद्ध प्रेम है। तो भगवान वहां स्वयं भगवान के रूप में प्रकट हुए, इसलिए कृष्ण चार हाथों में भी दिखाई देते हैं कई जगह पे। लेकिन माता यशोदा के पास स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं। यशोदा बुलाने नहीं गई है भगवान को, देवकी ने तो बहुत तपस्या की थी तब भगवान ने प्रकट हुए वहां। यशोदा के घर तो भगवान अपने आप चले आए, बगैर बुलाए के चले आए। यशोदा का मतलब जो दूसरों को यश दे, जो दूसरों का यश देता है, भगवान उनके पास अपने आप चले आते हैं। जो दूसरों को यश दे, दूसरों का ग्लोरी दे, यशोदा यश देने वाली माता जी। तो यह भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ। इस तरफ तो नंद के गोकुल में तो बहुत बड़ा आनंद हो गया कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अये नंद बाबा के लाला हुआ, ऐसे चारों ओर बहुत हंगामा हो गया, वाह वाह वाह। और उस तरफ बच्ची को ले जाके जैसे पहुंचा, वसुदेव जी दरवाजे बंद होने लगे, बच्ची को नीचे रखा, हथकड़ी पड़ गई, बच्ची ने रोया, जाके पहरेदार ने कंस को बुलाया, कंस आया, बच्ची को हाथ से लिया। अब देवकी बहुत विलाप करने लगी, बोला अपने बच्चे तो कुर्बान किए कोई बात नहीं, लेकिन अभी मैं यशोदा की बच्ची को भी मैं इस राक्षस से हाथ में दे दूं। बहुत विलाप किया, भैया ये देखो बच्ची है, तुमको बच्चे से डर था, ये लड़की है, बड़ी हो जाएगी, मैं तुम्हारे बेटे को ब्याह दूंगी, तुम इसको हाथ मत लगाओ, मत मारो, छोड़ती नहीं है। जबरदस्ती कंस ने हाथों से खींच लिया, और कंस से हाथों से निकलते हुए 8 भुजाएं धारण की, 8 हाथ बना के, और देवी ने ऊपर से कहा, हे मूर्ख कंस, तेरे को मारने वाला पहले ही जन्म ले चुका है। ये असुर लोग देवी से बहुत डरते हैं, भगवान से नहीं डरते, देवी से बहुत डरते हैं। अब कंस ऐसा डरने लगा, ऐसे जाके बोलता है, मेरी बहन देवकी मेरे से गलती हो गई, अरे भाई काल का ये बात है, मेरा मन माथा खराब हो गया, तुम लोग आजाद हो, अभी निकलो जेल से। दोनों को जेल से निकाल दिया, अपने जाके घर में रहो, मैं गलती किया, बस माफ करो। ऐसा डर गया उस देवी के कारण कि इन दोनों को आजाद कर दिया, बोलो तुम जाओ जाओ, और वो चले गए। यहां नंद बाबा ने बहुत बड़ा दूसरे दिन उत्सव किया, नंद उत्सव हुआ, दूध दही घी एक दूसरे के ऊपर ऐसे दही मारते हैं, माखन एक दूसरे के मुंह के ऊपर मार रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं और एक दूसरे सब घर से अपने दही माखन लाए, बांटो खिलाओ खाओ, बड़ा नंद उत्सव हुआ। दूसरे दिन नंद बाबा वहां से निकले, गए मथुरा में कंस को टैक्स देने के लिए। वसुदेव तब बाहर आजाद हो चुका था, जाके मिला, दोनों की आपस में मुलाकात हुई। तब वसुदेव कहने लगा, नंद बाबा तुम जल्दी वापस जाओ, मुझे मालूम है गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है, कोई बहुत खतरनाक बात होने वाली, क्योंकि वसुदेव को मालूम था कंस मीटिंग किया और नारद जी ने विशेष रूप से इसके सारे जो मंत्री थे चारुण मुष्टिक और बकास और पूतना, उन्होंने कहा ये विष्णु है ना, विष्णु ये विष्णु तुमको जिसने पहले मारा था। कंस क्या है, कंस उग्रसेन का बेटा नहीं था, काल नेमी नाम का राक्षस था जो उग्रसेन के घर में जन्म लिया था। तो ये राक्षस था पहले, और इसको ये छह जो बच्चे पहले मारे गए हैं किसके, देवकी के, ये छह बच्चे इनको शराप था कि तुम अपने बाप के हाथों मारे जाओगे। ये कंस जो है इसको इन किसके हाथों से उनको मरना था, और ये छह मरीचि के बेटे थे, इनको ये शराप था। तो बहुत बड़ा सुंदर इसके लिए लिखा है, लेकिन ये वर्णन नहीं करके हम आगे चलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब वसुदेव ने ऐसे कहा तो नंद बाबा वापस आने लगे। तब तक पूतना पहुंच गई, पूतना घर में चली गई, कहां चली गई पूतना, गोकुल में चली गई, आसमान के रास्ते आकाश से गई, आकाश से उड़ती हुई गई, सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया, हाथ में कमल का फूल ले लिया, और सारे लोग देखते हैं उसको गोकुल में, अरे इतनी सुंदरी कहां से आ गई, ऐसे देख रहे स्त्रियां देखती है, ये तो देवी आ गई है, कहीं लगता है लक्ष्मी माता आ गई है, हमारे बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए आई है। वो पूतना सीधी यशोदा के कमरे में पहुंच गई और कमरे में कहती, यशोदा तुमने कभी बच्चे को जन्म दिया है, देखो भूख मर रहा है, उठाती नहीं है, वो डांट रही है, और वो माता जी उसको देख रही है, अरे ये भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी मां इसको देख रही है, इसको पहचानती नहीं है, बहुत सुंदर देख के इसको देख रही है, अभी मेरी मां है, भक्ति स्वरूप है, इसने इसको देख लिया है, कोई बात नहीं हम इसकी गोद में चले जाते हैं, मेरी मां ने इसको देख लिया है, भक्ति इनकी दृष्टि इसके पड़ के ऊपर पड़ गई है, तो हम चलो कोई बात नहीं। उसने गोद में उठाया, कृष्ण को गोद में उठाया और अपना स्तन में मुंह डाला जिसके ऊपर जहर लगा हुआ था। भगवान ने कहा ठीक है, अब दोनों हाथ से भगवान ने उसका स्तन पकड़ लिया और कह लिया ठीक है, जहर दूध तो पीने के लिए मेरे को है ही आपके पास, लेकिन आप जहर भी पिलाने आई हो और आपका प्राण है वो भी मैं पी लूंगा, क्योंकि तुमने बहुत ले बच्चों को मारा है ब्रज में। लेकिन भगवान ने कहा मैं तो ब्रज के अंदर आया हूं माखन खाने के लिए, ये जहर काय के लिए पियूं, मारने का काम मैं क्यों करूं। एकदम भगवान ने आंखें बंद करके कहा ये काम मेरा नहीं है, ये भोलेनाथ शंकर विष पीना आपका काम है, प्रलय करना आपका काम है, जल्दी आओ। आंखें बंद करके बुलाया, ऐसे लिखा है, और आए भोलेनाथ ने कहा ठीक है हम विष पी लेते हैं और इसका प्राण भी निकाल लेते हैं, लेकिन मैं प्राण निकालने से पहले थोड़ा दूध पी लो माता जी का, आइए तो बेचारी। तो भोलेनाथ ने उसका विष पी लिया, भगवान ने दूध पी लिया, और फिर संहार शक्ति प्रलय की शक्ति, उसने कहा ठीक है, रोष भगवान को क्रोध आया, क्रोध में प्रलय की शक्ति ने प्राण पी लिया। अब पूतना बोलती है मुझे आलम मुझे छोड़ो बस बहुत हो गया। भगवान ने कहा मैं पकड़ना जानता हूं, छोड़ना मुझे आता नहीं है, मेरे को छोड़ना नहीं आता है, मैं क्या करूं, पकड़ना मेरे को आता है, कोई मेरे पास आ जाएगा फिर वापस नहीं जाएगा, अब तेरा शरीर तेरे को छोड़ सकता है, मैं नहीं छोड़ूंगा। और पूतना का शरीर पूतना का साथ छोड़ गया, भगवान ने पूतना को नहीं छोड़ा। अब पूतना को भगवान ने कहा यहां कहीं गिर गई तो मेरा ये इतनी गिरते ही भगवान का किसी को लग जाएगा ना तो वो अपने स्वरूप में आ जाएगा, स्वरूप मतलब जो उसका असली रूप है उसमें आ जाएगा, जैसे भक्त भगवान के निकट जाएंगे तो असली उनका आध्यात्मिक रूप है वो प्रकट हो जाएगा जिसमें वो भगवान की सेवा करेंगे। लेकिन असुर उसको भगवान का हाथ लगा, अभी जो असली रूप था पूतना का वो तो बड़ी राक्षस का था, 12 किलोमीटर लंबी थी, है भगवान का, कहीं इसका असली रूप यहां हो गया और गिरी तो ये नंद बाबा का महल नीचे आ जाएगा, यहां नुकसान हो जाएगा, भगाओ इसको यहां से। आ पूतना दौड़ती भागती हुई जा रहा, छोड़ो छोड़ो, भगवान चपके हुए बैठे हैं। जब शहर से बाहर गई और उस बागीचे के पास पहुंची जिसमें कंस बग का बड़े पेड़ लगे हुए थे, वहां नीचे गिरी प्राण निकला और 12 मील के अंदर सारे पेड़ वेड़ गिरा के बोला, आज पहले बच्चे मारती थी, अब सारे पेड़ों को भी मार के दबा के चूर्ण कर दिया इस मूर्ख। वो उधर गिर गई, गिरते ही बहुत बड़ा शोर हुआ, सारी गोपियां और गोप और गोपियां भागते हुए वहां देखते हैं, बड़ी पहाड़ जितने स्तन पहाड़ जितने और गुफाएं जैसे नाक और इतना ये बाल और ऐसे भयभीत है। तो देखते हैं अचानक ऊपर छोटा सा कृष्ण बगैर किसी भय के अभय होके खेल रहा है छाती के ऊपर। छोटे बालक को खेलते हुए देखा, गोपों को हिम्मत नहीं हुई, पीछे खड़े रहे, लेकिन गोपियों में इतनी वात्सल्य माता का भाव आया कि सब ऊपर चढ़ गई पूतना के शरीर के ऊपर, ऐसे कृष्ण को उठाया। और कृष्ण को उठा के ला के एकदम रोहिणी को बुलाया, यशोदा को बुलाया, बोला अब इसकी रक्षा करनी है। अब भगवान ने कहा, उनको प्रेरणा भगवान ने दी हृदय में कि मेरी रक्षा करनी है आपको, तो मेरी रक्षा करने के लिए आपको एक साधन बताता हूं। ये गाय का रूप धारण करके पृथ्वी मेरे यहां पर आई, मेरे पास आई थी, मेरी रक्षा गाय से करो। तो इसमें गोपियां गाय की पूंछ को लेके और भगवान के ऊपर ऐसे कर दिए, पूंछ को ऐसे और इसके करके फिर गाय के जो है मूत्र से भगवान को स्नान कराया और गाय के गोबर से 12 जगह पे तिलक लगाया, ओम केशवाय नमः नारायणाय माधवाय करके। तब गोपियों ने कहा, हम तो बहुत जल्दी में थी, ये सब हम भगवान को तिलक लगाया स्नान, लेकिन ये तो मुर्दे के ऊपर पड़ी थी, वो मरी हुई पूतना के ऊपर पड़ी थी, ये मंत्र असर करेंगे पता नहीं करेंगे, हमने आचमन भी नहीं किया। तो जल्दी जल्दी में तो पहले पहले कर लिया, लेकिन फिर एकदम गोपियों ने आचमन किया। आचमन करने के बाद बहुत बड़े कोई 5 श्लोकों में मंत्र है बच्चे की रक्षा की, किस चीज से रक्षा की, भाई भगवान आपका चलते गोविंद रक्षा करे, सोते हुए आपका नारायण रक्षा करे, आपका खाते हुए अच्युत रक्षा करके, भगवान के नाम लेके रक्षा करते। इसलिए आचार्य कहते हैं 2 चीजों को भगवान ने महत्व दिया, एक गाय को और एक भगवान के नाम को। जब तक गाय और भगवान का नाम इस सृष्टि में रहेगा, इस सभ्यता और समाज में रहेगा, तब तब किसी को किसी के भय करने की जरूरत नहीं है। तो गाय और नाम, भगवान का नाम, भगवान का नाम कौन लेंगे, तब भगवान का नाम तो ब्राह्मण लेगा, इसलिए ब्राह्मण का कर्तव्य है भगवान का नाम लेना और भगवान का नाम दूसरों को सिखाना। तो वो सभ्यता, वो सिविलाइजेशन जिसमें गाय और ब्राह्मण जो भगवान का नाम उच्चारण करता है, इन दो जिस भी समाज के अंदर, जिस सभ्यता अंदर ये 2 चीजों की सम्मान और रक्षा होगी, वहां कभी कोई उपद्रव, कोई दुख, कोई ताप, कोई संताप हो नहीं सकता। ये भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। भगवान अभी छोटे 5 साल के हैं तो बछड़े चराने जाते हैं, और जैसे 5 साल से ऊपर 1 साल के हो गए तो एक दिन आता है, उसको कहते हैं गोपाष्टमी। उस दिन भगवान कहते हैं अब गोपवत्स से होकर गौपाल हो गया, बड़ी गायों को चराना जानेंगे, अब गायों को चराने जाएंगे, थोड़े दूर गायों को चराने जाएंगे। तो माता यशोदा ने एक ने देखा, अब ये लाला जाएगा गाय चराने, जंगल में जाएगा, कहीं पांव में कांटा ना लग जाए। तो 2 बहुत अच्छे बूट बनाए कृष्ण बलराम के लिए, 4 बूट बना ली। सुबह भगवान को उठे, बोला मैया गाय ले जानी, बोला गाय ले जा, ले जाओ, बोला ये बूट पहन के जा बेटा, वो तुम्हारे को कांटा लगेगा। बोला हाँ माँ मेरे को कांटा लगेगा, बूट पहन के जाऊं, लाओ दिया। तो बोला माँ ये जो गाय हमारी जाती है इनके लिए आपने बनाए बूट? तो 9 लाख गाय है, 4 पांव एक गांव के, 36 लाख बूट चाहिए। मुझे धोमधम मदर यशो माँ माँ यशोदा कहने लगी, गायों के लिए तो जूते नहीं, क्या ऐसे तो नहीं होता है? बोला गायों को जूते नहीं पहनाएंगी तो मैं भी नहीं पहनूंगा, मैं तो गायों को लेके जा रहा हूं, उनको जूते पहनाओगी तो मैं पहनूंगा। तो भगवान ने ब्रज में 11 साल तक भगवान ब्रज में रहे और गायों को चराते रहे, लेकिन एक दिन भी चप्पल ब्रज में भगवान ने नहीं पहना, और जगह सिर्फ भगवान के चरणों की चिन्ह जो है वो धरती के ऊपर पड़ते थे, धरती इतनी कोमल मुलायम हो जाती थी, इतनी नरम हो जाती थी, इतनी नरम हो जाती थी कि उस चिन्हों को संभाल के रखती कि किसी और का पांव इसके ऊपर न पड़े। भगवान राम की लीलाओं में तो वर्णन आता है कि एक बार कांटा लगा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को कभी कांटा लगा ऐसा वर्णन शास्त्र में मिला नहीं। तो पृथ्वी ने कभी भगवान को स्वागत करती थी, वैसे पृथ्वी विष्णु पत्नी है, वो तो भगवान के चरणों को अपने छाती के ऊपर धारण करना चाहती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गायों को आगे रखा हमेशा। आपको मालूम है जरासंध ने 17 बार मथुरा के ऊपर आक्रमण किया, 17 बार भगवान श्री कृष्ण उसको यहां से पकड़ के मारने को तैयार होते, तब बलराम कहता हमारे मामा का सुसर है ना, मत मारो बेचारे को। कंस का सुसर था ना, कंस मामा था। तो बलराम कहता देखो भैया ये अपने मामा का सुसर है। तो कृष्ण कहता मामा को तो पहले ही राम नाम सत्य किया, आप सुसर को क्यों छोड़ेंगे। मामा को तो पहले ही ना मार दिया, आप सुसर को क्या बचाएंगे। तो एक दूसरे को आंख मारते थे, पर अब हम जाके कहां असुरों को ढूंढेंगे, इसको छोड़ फिर कटा करके ले आएगा, तब यहां मारना आसान हो जाएगा ना, अब हम कहां जाके ढूंढे सबको। हाँ भगवान बोले हम अपने यहां बैठे हैं घर में, क्यों ढूंढने जाए, इसको छोड़ दो, जाए दूसरे और कटे करके ले आएगा, जब कटे करके लाएगा तब मार के फिर भेज देंगे, फिर और कटे करके लाएगा, तो असुर अपने आप यहां लाता रहेगा ना, हम काहे के लिए ढूंढे। लेकिन 18वीं बार जरासंध ने ब्राह्मणों को बुलाया, बोला ब्राह्मणों तुम देखो मेरा इस बार विजय होगा कि नहीं होगा। लेकिन कहता देखो बात सुनो, अगर विजय होगा तो ठीक है, नहीं होगा तुम समझते मैं मर जाऊंगा, तो उससे पहले मैं तुम्हारे को मार दूंगा। ब्राह्मण को तुम हमारे साथ चलो और मंत्र पढ़ते चलो और विजय होगी हमारी, ये हमारे को वचन दो। अब ब्राह्मण ने कहा यहां इसको कहेंगे कि तुम्हारी हार होगी, तुम नहीं जीत सकते हो, तो हमको मार देगा। अभी इनके हाथों से मारने से अच्छा है कि हम उधर जाएं भगवान का दर्शन करके मरें तो अच्छा है। अब आगे ब्राह्मण पीछे जरासंध की सेना, और ब्राह्मण बेचारा क्या गाते जा रहे हैं, नमो ब्राह्मण देवाय गोवर्णताय जगतताय गोविंदाय नमो नमः, बेचारे ये गाते जा रहे हैं। अब कृष्ण बलराम ने देखा इस बार अगर जरासंध से लड़ाई की तो ब्राह्मणों को मारना पड़ेगा, नहीं तो वो मार देगा ब्राह्मणों को, वो गाय और ब्राह्मण का जो ब्राह्मणों को आगे करके ला रहा है, इसलिए इस बार लड़ाई नहीं करेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़ के भाग गए, उनका नाम हो गया रणछोड़। वो रणछोड़ के भाग गए, क्यों भाग गए, केवल ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए। तो गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए भगवान अपने ऊपर आपत्ति लेते रहे सदा के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण का बहुत ज्यादा स्नेह और प्रेम गाय से है, उसका उसको कितना सम्मान दिया इस पूतना वाले, पूतना उधार के 6वें अध्याय में लिखा है कि पूतना जैसी राक्षसी जो भगवान को विष दे के मारने के लिए आई थी, उसका स्तनपान किया, भगवान ने उसको माता का स्थान दे दिया, तो उन गायों का क्या कहना जिनके स्तन के ऊपर भगवान ने मुख डाल के दूध पिया। तो पूतना से तो उनकी गति ऊपर होगी ना, गाय तो बड़े प्रेम से भगवान को दूध पिलाया, और विशेष रूप से जब ब्रह्मा ने ग्वाल बालों को चुरा लिया था और बछड़े चुराए लिए, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं बछड़े बन गए, और 1 साल तक भगवान श्री कृष्ण स्वयं सब गायों का दूध पीते रहे। तो उन गायों का क्या गति होगी, जब पूतना को इतनी बड़ी महान गति मिल सकती है तो उन गायों का क्या। तो उन सब गायों को तो भगवान ने वो धात्री गति, उससे ऊपर की गति दी होगी, फिर तो माताओं की क्या बात है जो प्रेम से भगवान को दूध पिलाया करती थी वात्सल्य भाव की। तो गायों का भगवान ने दूध पिया, और भगवान जाके गायों से मुंह में ऐसे जबरदस्ती बछड़े को हटा के खुद उसका दूध पिया करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम गोपाल है। जन्माष्टमी के दिन पे हमारे को भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए बहुत सरल तरीका है कि भगवान जिनसे प्रेम करता है उनसे प्रेम करना चाहिए। जैसे शास्त्र ये कहते हैं भगवान के भक्तों की सेवा करने से भगवान की प्राप्ति होती है। दास 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 अनुदास गोपी भरतहु पद कमल योर दास 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 अनुदास। भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों के दासों के दासों के दास है, उनकी सेवा करने से भगवान की प्रसन्नता और प्रेम प्राप्त होगा। तो उन भगवान के प्रेमी भक्तों में जिनसे भगवान ने अनन्य प्रेम किया है वो गैया है। तो गाय की सेवा करने से गाय के प्रति गौ रक्षा वाणी जम, गौ रक्षा शब्द है, भगवत गीता में गौरक्ष कृषि गौरक्षा वाणिजम वैश्य कर्म स्वभावजम, गौरक्षा करना ये बहुत से बड़ा हमारा ये धर्म है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए करने वालों का ये पहला धर्म है। कि इसलिए प्रभुपाद कभी कहा करते थे एक एकड़ जमीन और एक गाय अगर किसी के पास है तो वो जीवन भर सुखी रह सकता है, अपनी जमीन से ताजा फल और सब्जी और अन्न पैदा करेगा, दूध गाय का पिएगा, पूरे परिवार के साथ सुखी रह सकता है, न कुछ नौकरी करने की जरूरत है, न कुछ फैक्ट्री में जाने की जरूरत है, जितने दिन जीना है उतने दिन सुखी जी सकता है। तो ये पुराने जमाने में दूध और पूत इन दो को ही मानते थे, पुत्र और गाय घर में है और दूध तुम्हारा अपना है और पुत्र तुम्हारा अपना है, दूध पूत है तो तुमको सुखी माना जाता था। तो सब घरों में पहले गाय हुआ करती थी, हर गृहस्थी को घर में गाय रखनी होती थी, यह नियम था। अब गृहस्थी घरों में गाय नहीं रख सकते हैं, ये ऐसी अजम कब अभी बंबई में बोलते हैं गाय रखें, बोले कहां रखें, 11वें माले पे रहते हैं, वो गाय को कहां ले जाए ऊपर। तो गाय नहीं रख सकते हैं घर में, तो फिर जहां गाय रखी जाती है वहां एक गाय को अडॉप्ट कर लेना चाहिए कि ये गाय हमारी है, देखभाल आप करो, इसका पालन पोषण हम करेंगे, और उस गाय का दूध अथवा उसका घी उस व्यक्ति को पहुंचा देना चाहिए। तो ऐसे भी गाय की सेवा की जा सकती है, जो गाय की सेवा करेगा गाय उसकी रक्षा करेगी, क्योंकि गाय धर्म का प्रतीक है, बेल धर्म का प्रतीक है, गाय पृथ्वी है और बेल धर्म है। धर्म क्या है? धर्म ध्वज, धर्म जो बेल के रूप में धर्म खड़ा था जब परीक्षित महाराज को मिला था, तो बैल धर्म है, जो धर्म की धर्म रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करेगा उसकी रक्षा होगी। आपको उस गांव का गाय का तो पता है ना, जो वशिष्ठ महाराज के पास गाय थी और वो ऐसी गाय थी नंदनी कि जब विश्वामित्र उसके पास आया, राजा था विश्वामित्र उस वक्त में, राजा था, अपनी सेना के साथ आया और सेना के साथ आया तो महाराज वशिष्ठ ने पूरी सेना को बिठाया और गाय नंदनी ने सबके लिए भोजन जैसा चाहे वैसा तैयार किया। विश्वामित्र का मन आ गया कि ये गाय मेरे पास होनी चाहिए, मैं राजा हूं। गाय लेने आया, वशिष्ठ महाराज ने कहा ये तो आश्रम की प्रॉपर्टी है, ये तो सेवा कर गई, ये तो गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं इनके लिए। तो विश्वामित्र लड़ाई करने के लिए है, वशिष्ठ जी ने कुछ नहीं किया, नंदनी गाय ने अपने आप से इतना सैनिक पैदा किया, विश्वामित्र को भगा दिया। तो महाराज तो बैठे थे अपनी जगह थे, वशिष्ठ ने उस गाय ने विश्वामित्र की पूरी सेना समेत विश्वामित्र को हरा के भगा दिया वहां से। तो गाय अपने मालिक की रक्षा करती है, इतनी बुद्धिमान पशु है, इतना बुद्धिमान पशु है, अपने घर अपने आप लौट के आएगा, कहीं भी छोड़ते हैं। आपने नहीं देखा ऐसा, हम उस स्थान पे रहते हैं वृंदावन में, तो अभी तो गाय ही गाय है, लेकिन हमारे घरों में 4-5 गाय होती थी, सुबह धो के छोड़ते थे, अपने जगह पे जाएंगी, वहां ले जाओ जंगल में 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर घूम के शाम को अपने घर में आएंगी, धो फिर जाके बाहर एक जगह बैठ जाएंगी, कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं, अपना घर अपने घर, अपने घर को पहचान लेती है, घर मेरा कहां है, और अपने मालिक को पहचानती है, अपने मालिक की रक्षा करती है गाय। आदमी आजकल कुत्ता बांधते हैं कि हमारी रक्षा करेगा, कुत्ता तुम्हारी रक्षा करेगा, कुत्ता क्या तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारा दिमाग भी कुत्ते जैसा हो गया, ये डॉग कॉन्शियसनेस होगी, गार्ड कॉन्शियसनेस के बजाय भगवान की भावना के बजाय कुत्ता भावना वाला माहौल हो गया। तो गाय रक्षा किया करती थी, कुत्ते को देख के डर थोड़ी लगता, गाय का सिंह देख के आदमी भाग जाता है दूर से ही। ये तो कैसा है, तो समाज का सत्यानाश कर दिया इसने। तो गाय रक्षा करती है, तो ऐसे गाय रखना बहुत, जीवन में गाय की सेवा करना बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद ने इसलिए अमेरिका में गौशाला बनाई, जो लोग गाय का भक्षण करते थे उनको गाय का रक्षा करने के लिए शिक्षा दी, वहां गौशाला, अभी भी न्यू वृंदावन में बहुत बड़ी गौशाला है, इतनी विशाल गौशाला, वहां कई जगहों पर गीता नगरी में गौशाला बनाई प्रभुपाद ने, काउ प्रोटेक्शन के लिए बहुत बड़ा उद्यम किया कि गाय की रक्षा करें। गाय ब्राह्मणी कल्चर, इन दो की रक्षा होने से आप विश्व के अंदर शांति ला सकते हो। विश्व के अंदर शांति लानी है तो ये दो चीजों की रक्षा करनी पड़े। तो जन्माष्टमी पे हम भगवान श्री कृष्ण को ये प्रार्थना करेंगे कि आपके मॉरिशस में गाय रक्षा के लिए लोगों में जागृति आए, बहुत नहीं तो भी 50% से अधिक यहां लोग भारतीय संस्कृति से संबंधित हैं, जिनमें गाय को माता का स्थान दिया गया है। जो हमारी आठ माताएं हैं उनमें से एक गाय माता है, अपनी माता, गाय माता, राजा की पत्नी माता, गुरु की पत्नी माता, ब्राह्मण की पत्नी माता, पृथ्वी माता, दूध पिलाने वाली माता, तो एक गाय माता भी है। तो इस माता इस देश में गौ रक्षा का वातावरण होने से लोगों के मन की भावनाएं बदलेंगी, उनको गौ की प्रति भावना से कृष्ण भावना उनकी बढ़ेगी। तो ये प्रचार करना चाहिए भक्तों को। हरे कृष्ण, धन्यवाद।